अच्छा, तो डॉक्टर साहब को शादी के इतने महीनों बाद हनीमून पर जाने की सूझी है। अहाना अक्षय की बात सुनकर मुस्कुराई बिना न रह सकी। वो जानती थी कि अक्षय उसके लिए कितना तड़पता है, इन हालातों से कितना परेशान है। अहाना के सवाल पर अक्षय ने बेचारी से उसे देखा और परेशान स्वर में बोला, क्या करूं जान, मैं तंग आ गया हूं। रात को आप इतनी देर से कमरे में आती हैं और सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ मुझसे दूर जाने को तैयार हो जाती हैं। ना मैं आपसे ठीक से बात कर पाता हूं और ना आपके साथ अकेले में कुछ वक्त बिता पाता हूं। आपको कहीं बाहर भी नहीं लेकर जा पाता क्योंकि आपकी प्यारी सासू माँ आपको कुछ देर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। एक बार फिर अपनी माँ से उसकी शिकायत उसके लबों पर आई थी और अहाना ने तुरंत उसे टोक दिया, हमारी सास आपकी भी मम्मी है। हाय, ये क्या कह दिया था अहाना ने। बेचारे अक्षय का चेहरा ही उतर गया। उसने बड़े ही मायूसी भरे स्वर में कहा, यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो मेरी मम्मी है, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकता। पर सच में मैं यहाँ आपके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए भी तरस जाता हूँ। सारा दिन तो हॉस्पिटल में पेशेंट से घिरा रहता हूँ और घर आकर भी मुझे आपके साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का मौका नहीं मिलता। आपको कामों से फुर्सत नहीं होती, जब तक कमरे में आती हैं इतनी बुरी तरह थकी होती हैं कि आपको और परेशान करने का जी नहीं चाहता। सुबह आँख खुलते ही आप गायब हो जाती हैं और कभी इन सबसे कुछ पल चुराने की कोशिश करूँ तो मम्मी को ठीक उसी वक्त आपसे काम पड़ जाता है। इन हालातों से अक्षय बुरी तरह खींच चुका था और उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके शब्दों में साफ जाहिर हो रही थी। सच ही तो था, रूपाली जी दोनों को अकेले में वक्त ही नहीं देती थी। दिन में तो हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने ही रखती थी, रात को भी अहाना को देर तक कामों में उलझा कर रखती थी। शायद वो जानबूझकर दोनों को दूर रखने की कोशिश करती थी। अब बेचारा अपनी माँ से साफ साफ ये भी नहीं कह पाता था कि उसे अपनी बीवी के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना है, और पिछली बार जो नाटक हुआ था उसे वो अब तक नहीं भुला था, तो बस मन ही मन कुड़ता रहता था, अगली बार जब आप आएंगी उससे पहले मैं एक फुल टाइम मेड रख लूँगा ताकि आप पर से काम का बोझ कुछ कम हो जाए और आप थोड़ा वक्त अपने इस बेचारे पति को भी दे सकें। अक्षय ने खुद ही इस प्रॉब्लम का हल सुझाया, करके देख लीजिए अगर कुछ फ़ायदा हो तो। अहाना ने सपाट लहजे में ये बात कही और उसका अंदाज अक्षय को कुछ अटपटा लगा। उसने भौं उठाते हुए सवाल किया, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बस यूं ही, समझदार को इशारा काफ़ी है और महादेव की कृपा से हमारे पति तो बहुत समझदार हैं। अहाना ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया जिसे सुनकर अक्षय सोच में पड़ गया। मम्मी के वजह से कह रही है ना, अक्षय ने अंदाज़ा लगाया और जवाब में अहाना होले से मुस्कुरा दी। अक्षय का मुंह एक बार फिर लटक गया और उसने लाचारी से कहा, मैं क्या करूं यार, इतनी कोशिशों के बाद भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं या शायद करना चाहती ही नहीं है। पता नहीं उन्हें आपसे क्या परेशानी है। हम बताएं क्या परेशानी है? अहाना ने जैसे ही ये कहा अक्षय ने तुरंत हामी भरी, बताइए। उन्हें लगता है कि हमने उनसे उनके बेटे और परिवार को छीन लिया है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसे व्यवहार करती हैं। अहाना की बात सुनकर अक्षय पहले तो चौंक गया, फिर झुंझलाते हुए बोला, ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं। शायद ना हो, पर जो हमें लगा हमने बता दिया। अब आप आराम से सोइए और हमें इजाज़त दीजिए, अहाना ने सहजता से कहा और अपनी कमर पर लिपटी उसकी बाहों को हटाने लगी। अक्षय जो उसकी बातों में उलझा हुआ था उसने भी अब की बार बिना उसे तंग किए उसे आज़ाद कर दिया। अहाना उठकर बैठ गई, फिर झुककर उसके गाल को चूम लिया। ज्यादा मत सोचिए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में सोचकर परेशान होने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वो सब अच्छा करते हैं। इतनी परेशानियों के बीच भी आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेती हैं? अक्षय ने हैरानगी से सवाल किया। शायद इसलिए क्योंकि इन सब परेशानियों में हम आपके साथ हैं और इतना काफ़ी है हमारे लिए, अब हम जाएं? अहाना ने सौम्य सी मुस्कान सजाते हुए जवाब दिया। अक्षय ने इनकार में सर हिलाया और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसका इशारा समझते हुए अहाना ने नाराज़गी से कहा, बहुत लालची होते जा रहे हैं। अक्षय ने तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए आंखों से कुछ इशारा किया जिसे समझते हुए अहाना ने पहले आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा, फिर उसके चेहरे की ओर झुक गई। अक्षय बड़ी ही बेसब्री से उसके नर्म लबों के अपने गाल पर ठहरने का इंतजार करने लगा, पर अहाना ने उसके गाल को चूमने की जगह उसके बालों को बिगाड़ दिया। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं, अहाना ने पीछे हटते हुए उसे चिढ़ाया और खिलखिलाते हुए दौड़कर बाथरूम में घुस गई। अक्षय कुछ पल नाराजगी से बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर अहाना के खिलखिलाते चेहरे को याद करके अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया। अहाना लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाई नीचे आई, पर जैसे ही नजर वहां यमराज जैसी खड़ी रूपाली जी पर पड़ी उसकी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उसने झट से आंचल सर पर डाला और सर झुकाते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, आज उठने में थोड़ी देर हो गई, वक्त से उठा करो। तुम्हारे तरह घर के बाकी सदस्यों को सारा दिन घर में बैठकर पलंग नहीं तोड़ना होता, जो जब मन किया उठो और जब जी चाहेगा तब रसोई में कदम रखो। सबको काम पर भी जाना होता है, उसके लिए वक्त पर नाश्ता और लंच तैयार करना इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी, आज इसे ध्यान रखेंगे। आहाना ने झट से हामी भर दी, फिर नजरें उठाकर उन्हें देखते हुए सवाल किया, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाना है? ये उसका रोज का था। काम भले वो करती थी पर चलती रूपाली जी की ही थी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर में क्या बनेगा सब वही तय करती थी। आहाना के सवाल पर उन्होंने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया, अक्षय के लिए चीज सैंडविच बना लेना, तुम्हारे पापा जी आलू के पराठे संग दही लेंगे, अन्वय दही नहीं खाता, उसके लिए धनिये की चटनी बना लेना, हम सादे पराठे लेंगे अचार के संग, साथ में आम का जूस जरूर बना लेना। पूरा मेन्यू बताकर वो वहाँ से जा चुकी थी और आहाना जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए कामों में लग गई थी। आहाना, जूस नहीं बनाया आज आपने? अक्षय ने सैंडविच खाते हुए टेबल पर नजरें घुमाने के बाद नजरें आहाना की ओर घुमाई थी। जी बनाया है, ठंडा होने के लिए रखा था तो लाना भूल गए, अभी लेकर आए। आहाना ने झट से सर हिलाया और रसोई की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद वो हाथ में जूस का जग लेकर लौटी और अक्षय के ग्लास में डालने ही वाली थी कि रूपाली जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर घबरा गई। अक्षय कभी आम का जूस नहीं पीता, उसे आम से एलर्जी है। इतने वक्त में इतना भी नहीं पता चला तुम्हें? अपने पति की पसंद नापसंद तक का ख्याल नहीं रखा जाता तुमसे? शादी को इतना वक्त हो गया पर अब तक तुम ये तक नहीं जान पाए कि तुम्हारा पति क्या खाता है और क्या नहीं, उसे किससे एलर्जी है और किससे नफरत? ऐसे ध्यान रखोगी तुम हमारे बेटे का? यही सब सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें।